अब 106 संख्या की कारिका है, द्रव्याभिघातात् प्रचितौ भिन्नौ दीर्घ प्रुतावपि कंपेतु परते जाता नादा वृत्तेर विशेषकाः। जो बात पहले चर्चित है उसी बात को जो है ना यहाँ पर दोबारा से और स्पष्टतया बता रहे हैं। कहते हैं कि द्रव्याभिघातात्, माने द्रव्य से अभिघात होने पर, द्रव्य का अर्थ लेंगे स्थान और करण। करण जानते हो कि नहीं, स्थान तो हो गया तालवादि उच्चारण स्थान और करण हो गया जिह्वा। जिह्वा को जो है ना करण माना जाता है उच्चारण का। तो स्थान और करण से, करण ही यहाँ पर द्रव्य शब्द से लिया जाएगा। तो द्रव्य से अभिघात होने पर माने स्थान, उच्चारण स्थान और करण से अभिघात होने पर माने टक्कर होने पर, इसको सामान्य भाषा में और ऐसे विशेष भाषा में संयोग विभाग होने पर प्रचितौ, प्रचितौ माने विवृद्धौ, वृद्ध होने पर, ध्वनि के बढ़ जाने पर, भिन्नौ दीर्घ प्लुतावपि, तो ध्वनि के बढ़ जाने पर वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, माने दीर्घ के रूप में प्रतीत होता है और प्लुत के रूप में प्रतीत होता है। तो विवृद्ध ध्वनि जो है माने बढ़ी हुई जो ध्वनि है वह जैसे अ आ आ है, तो आ, दूसरा जो आ मैंने बोला है उसमें ध्वनि बढ़ी हुई है और तीसरा जो हमने आ बोला उसमें और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो जो विवृद्ध ध्वनि है, प्रचित ध्वनि है, वह दीर्घ और प्लुत के रूप में भिन्न भिन्न ध्वनियां होती हैं। कंपेतु ऊपर कंपेतु उपरते जाता नादा वृत्तेर विशेष कहा। कंपे फिर क्या होता है ना, कंपन होता है, माने जब तक वह ध्वनि वर्ण का स्वरूप लाभ न कर ले तब तक वह जो संयोग विभाग होता है ना वायु में, उसके कारण वायु में कंपन उत्पन्न होता है। और वह कंपन जब उपरत हो जाता है माने विरत हो जाता है, खत्म नष्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वह जो प्राकृत ध्वनि है उससे वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वही कहते हैं कि कंपेतु उपरते जाता नादा हा। माने कंपन जब वायु का जो कंपन है जो वह जब उपरत हो जाता है, विरत हो जाता है, उसके बाद जाता है नादा हा। उसके बाद जो नाद उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वह कौन सी ध्वनि होगी, वह वैकृत ध्वनि होगी। वह वैकृत ध्वनि वृत्ते विशेषका, वही जो है वृत्ति का विशेषक होती है। विशेषक माने भेद जनक होती है, वृत्ति मतलब द्रुतादि। तो द्रुतादि जो वृत्तियां हैं उसकी वह भेद जनक होती है, न तो स्फोटस्य, स्फोट की भेद जनक वह वैकृत ध्वनि नहीं होती है। तो ये चीज तो पहले भी आ चुकी थी, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। 107वीं कारिका में अनवस्थित कंपेपि कर्णे ध्वनयः अपरे स्फोटादेव उपजायन्ते ज्वाला ज्वालांतरादिव। यहाँ पर जो है ना मतभेद बताया जाता है, वैकृत ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है वो तो पहले बताया ना, कहा कि द्रव्य से अभिघात होने पर क्या होता है कि प्राकृत ध्वनि उत्पन्न होती है, और फिर जब वायु का कंपन जब उपरत हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है ना वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है और वही जो है द्रुतादि वृत्ति का भेदक होती है। ये जो बात बताया इसमें क्या बताया, मेन बात कि जब कंपन उपरत हो जाता है, जब कंपन नष्ट हो जाता है, उसके बाद वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है। एक मतांतर ये है कि नहीं, कंपन के समय में ही जो है ना वह प्राकृत ध्वनि एवं न तो कंपात, माने प्राकृत ध्वनि से ही वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन से जो है ना वैकृत ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा भी मतांतर है। उसी मतांतर को इस कारिका में बताया कि अनवस्थित कंपे भी, अनवस्थित कंपे भी माने कंपनम बिना अभी, माने कंपन के बिना भी, कर्णे ध्वनयः अपरे, कर्ण में माने उच्चारण स्थान और जिह्वा में, अपरे ध्वनयः अन्य जो ध्वनियां हैं माने वैकृत ध्वनियां जो हैं वह उत्पन्न लेती हैं, किससे, तो स्फोटादेव उपजायन्ते। स्फोटात का अर्थ यहाँ पर मतांतर बताया जा रहा है ना, तो स्फोटात का अर्थ यहाँ पर होगा प्राकृत ध्वनेः, तो स्फोटात एव उपजायन्ते, माने प्राकृत ध्वनि एव जन्म लभन्ते, प्राकृत ध्वनि से ही जो है विकृत ध्वनि उत्पन्न होती है, न तु कंपात, कंप वायु के कंपन से विकृत ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। कैसे दृष्टांत दिया है यहाँ पर, ज्वाला ज्वालांतरादिव, क्या कि जैसे अग्नि की एक ज्वाला से ज्वालांतर उत्पन्न होती है, अन्य ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से प्राकृत ध्वनि से ही जो है विकृत ध्वनि उत्पन्न लेती है, बल्कि प्राकृत ध्वनि उत्पन्न होने के बाद वायु के कंपन खत्म होने के बाद विकृत ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर अग्नि की ज्वाला का दृष्टांत दे करके इस मतांतर में बताया गया कि प्राकृत ध्वनि से ही विकृत ध्वनि उत्पन्न होती है, वायु के कंपन से विकृत ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अभी प्राकृत और विकृत ध्वनि के स्वरूप को यहाँ पर जो है ना बताया गया मतांतर के साथ। अब इस 108वीं कारिका की जो हम चर्चा करेंगे ना, ये परीक्षा सबकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें और यहाँ से जो है ना, अभी कुछ मैं समझता हूँ शायद चार पांच सात कारिकाओं तक जो है इसी कारिका से रिलेटेड बातें आपको बताई जाएंगी। इस कारिका में मेन क्या बात है कि ये जो शब्द हम लोग कहते हैं, ये शब्द वस्तुतः जो है ना वो किस चीज से बनता है, उसमें तीन प्रकार के जो है ना शास्त्र में मत प्रतिपादित हैं, और उन्हीं तीनों मतों को 108वीं कारिका में बताया गया, और फिर उसका जो है ना विवेचन आगे की कारिकाओं में किया जाएगा। इसमें है, पहले हम कारिका पढ़ लेते हैं कि वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते कश्चित् दर्शन भेदो हि प्रवादेषु अनवस्थितिः। यहाँ पर प्रवादेशु जो आया है शब्द ना, इसका अर्थ करना है मत विशेषेशु, माने मत विशेष में अनवस्थिति है। अनवस्थिति है माने निश्चितता नहीं है, शास्त्रांतर शास्त्र शास्त्रांतर में अनिश्चितता है, मत में अनिश्चितता है, माने कोई कोई मत मानता है, कोई किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। प्रवादेशु अनवस्थिति, मत विशेषेशु अनिश्चितता वर्तते, माने भिन्नता वर्तते, माने मतभेद है। प्रवादेशु अनवस्थिति मतलब मतभेद है। कहाँ पर, तो कैश्चित दर्शन भेदो ही, माने दर्शनों में परस्पर मतभेद पाया जाता है। क्या मतभेद है, तो वायो अनूनाम ज्ञानस्य शब्दत्वापत्ति इष्यते। कोई जो है ना दर्शन कहता है कि वायु ही शब्द है, कोई कहता है कि अणु शब्द है, कोई कहता है कि ज्ञान शब्द है। तो वायो अनूनाम ज्ञानस्य शब्दत्वापत्ति, शब्दत्वापत्ति माने शब्दत्वम, माने वायु में शब्दत्व होता है, अणु में शब्दत्व होता है, ज्ञान में शब्दत्व होता है। इस तरह से मतभेद जो है दर्शनों में पाया जाता है, ये इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा जो है ना मेरी ओर से आप सुन लीजिए कि इसमें व्याख्याकारों ने जो है ना जो व्याख्याएं की हैं उसमें भी जो है ना थोड़ा सा मतभेद दिखाई देता है, तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ जो वायु है, जबकि वायु में ही शब्दत्व होता है, तो इसमें कौन सा वायु लेना है, तो प्राण वायु लेना है, ठीक है। और ये चीज में इसमें कहीं मतभेद नहीं है, ये वायु का अर्थ प्राण वायु यहाँ पर सब लोग मानते हैं। दूसरा जो शब्द है अणु, कि अणु में शब्दत्व होता है, माने अणु ही शब्द है, इसमें व्याख्याकारों में मतभेद है। कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि अणु जो है ना ये अणु परमाणु वाला है, और कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि ये जो अणु है, अणु का मतलब यहाँ पर अणु परमाणु नहीं होकर के यहाँ पर अर्थ है सूक्ष्म शब्द। तो ये व्याख्याकारों में भेद है। मान लो आपको परीक्षा सब में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि अणुनाम अर्थात सूक्ष्म शब्दानाम अथवा शब्दस्य अणुनाम, माने शब्द का अणु, अणुनाम का मतलब शब्द का अणु अथवा सूक्ष्म शब्द। इस तरह से दो तरह का अर्थ जो है व्याख्याकारों ने किया हुआ है। और तीसरा जो है कि ज्ञान में शब्दत्व है, इसमें व्याख्याकार में कोई भेद नहीं है, केवल अनुनाम में व्याख्याकारों में भेद है। अनुनाम माने शब्दाणु अथवा सूक्ष्म शब्द, ये दो तरह की व्याख्या होती है। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर वायु में शब्दत्व होता है, माने वायु ही शब्द है, ऐसा मानना है किसका, शिक्षाकार का। शिक्षाकार माने पाणिनी शिक्षा का आपने नाम सुना होगा, तो पाणिनी शिक्षाकार जो पाणिनी शिक्षाकार जो हैं उनके मत में वायु में ही शब्दत्व होता है। अनुनाम में अणु में जो शब्दत्व मानते हैं ये जैनियों का मत है, ऐसा जो है ना व्याख्याकार लोग बताते हैं। और तीसरा जो है कि ज्ञान में शब्दत्व होता है ये पातंजल दर्शन का मत है, माने वैयाकरणों का मत है कि शब्दत्व शब्द जो है ना वह और कुछ नहीं है, वह ज्ञान ही शब्द बनता है। तो वायु शब्द बनता है, अणु शब्द बनता है और ज्ञान शब्द बनता है। इस तरह से प्रबाद जो है ना मत विशेष उपलब्ध होते हैं और दर्शनों में परस्पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये मत मतांतर पाए जाते हैं। तो तीन तरह की शब्दत्वापत्ति, शब्दत्वापत्ति माने शब्द तत्व, तो तीन तरह का शब्द तत्व जो है शास्त्रों में माना गया है, एक वायु आत्मक, एक अणु आत्मक और एक ज्ञान आत्मक। अब इसका जो है ना मत विवेचन अगली कारिकाओं में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो वायु में कहा कि वायु में शब्दत्वापत्ति होती है, माने वायु ही शब्द है, इसको यहाँ पर विवेचित किया है 109वीं कारिका में, कहा कि लब्धक क्रिया प्रयत्न न वक्तु इच्छानुवर्तिना स्थानेषु अभिहतो वायु शब्दत्वं प्रतिपद्यते। कैसे वायु जो है शब्द बन जाता है उसको बताया कि लब्धक्रिया माने प्रेरित, किससे प्रेरित, तो प्रयत्न न माने प्रयत्न के द्वारा है, जो लब्धक क्रिया है वायु माने प्रेरित जो वायु है। आप जानते हैं कि नहीं, एक सुना होगा आपने कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स्वप्रेरयति मारुतम सोदीर्णो मूर्ध्न्यभीतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णांजनयते रूपम। माने वायु जो है कैसे वर्ण का रूप धारण करता है, शब्द का रूप धारण करता है, उसका प्रोसेस जो है इसमें पाणिनि शिक्षा में बताया गया है। ये जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक है, इसको थोड़ा मैं सामान्य रूप से बता देता हूँ कि आत्मा बुद्ध्या समेत्य, मैं आत्मा जो है, आत्मा का अर्थ यहाँ पर करेंगे अंतःकरण, तो अंतःकरण जो है ना बुद्ध्या समेत्य माने बुद्धि के साथ मिल करके, आत्मा बुद्ध्या समेत्य आत्मा अंतःकरण जो है बुद्धि के साथ मिल करके मनोयुंगते विवक्षया, विवक्षा से मन को युक्ते माने युक्त करता, विवक्षा माने वक्तुम इच्छा, बोलने की जो इच्छा है ना उस इच्छा से मन को संयुक्त करता है, मनोयुंगते विवक्षया। फिर मनः कायाग्नि माहन्ति, उसके बाद क्या होता है कि मन जो है वह कायाग्नि पर आहनन करता है, माने उस पर चोट पहुंचाता है, उसको प्रेरित करता है। कायाग्नि समझते हैं ना, काय माने शरीर, शरीर में रहने वाला जो अग्नि है माने जठरानल कह लीजिए, तीन तरह का अनल होता है ना, जठरानल, बडवानल और दावानल। जंगल की जो आग है उसको दावानल कहते हैं, समुद्र की जो आग है उसको वडवानल कहते हैं, और शरीर में रहने वाली जो आग है, पेट में रहने वाली जो आग है उसको जठरानल कहते हैं। तो मनः कायाग्निम आहन्ति, मन जो है उस कायाग्नि को आहत करता है। स्वप्रेरयति मारुतम, और वह जो आग है मारुतम प्रेरयति, मारुतम माने वायुम प्रेरयति, वह आग जो है कायाग्नि वह मारुत को प्रेरित करती है ऊपर की ओर। स्वः उदीर्णः, वह जो है मारुत उदीर्ण होता है माने ऊपर की ओर चलना शुरू करता है। फिर सोदीर्णो मूर्धनि अभिहितः, फिर ऊपर की ओर जाकर के फिर वो मूर्धा से टकरा जाती है वायु। तो सोदीर्णो मूर्धनि अभी, तो फिर वक्त्रमापाद्य मारुता, उसके बाद क्या होता है कि वक्त्रम माने मुखम, वह जो मुख में जो जब ऊपर की ओर वायु चली और मूर्धा से टकराई तो फिर पूरे मुंह में वह वायु फैल जाती है। वक्त्रम आपाद्य मारुता, मारुत जो है पूरे वक्त्र में आपादित हो जाती है, फैल जाती है। और फिर वर्णांजनयते रूपम, और उसके बाद जो है ना वहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि वर्ण का स्वरूप अख्तियार कर लेती है। तो ये प्रोसेस जो है ना पाणिनि शिक्षा में बताई गई है, उसी को यहाँ पर संक्षेप से इस कारिका में कहा कि लब्धक क्रिया प्रयत्न है ना, माने प्रयत्न के द्वारा जो लब्धक क्रिय वायु है माने प्रेरित वायु है वह वक्तुः इच्छानुवर्तिना, वक्ता की इच्छा के अनुरूप मति जो है स्थानेषु अभिहतो वायुः, उच्चान स्थान और करण से जो वायु अभिहत होती है माने वायु की जो टक्कर होती है, वायु का जो संयोग विभाग होता है उससे शब्दत्वं प्रतिपद्यते, उससे जो है वायु शब्दत्व को प्राप्त करती है। तो इस 109वीं कारिका में वायु से शब्द कैसे बनता है उसको बताया गया, और 110वीं कारिका में भी इसी बात को जो है ना बताया जाएगा, लेकिन इस कारिका को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, आज यहीं रखते हैं।